हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन ने जो गीता के अमृत का पान किया, उन्हीं की कृपा से आज 5000 वर्ष पूर्व भी हम उसी अमृत का पान श्रील प्रभुपाद की कृपा से कर पा रहे हैं। पिछले हफ्ते सांख्य दर्शन में हमने भगवान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में कैसे सम होना चाहिए ये सीखा, और अब भगवान आज के श्लोक से रुख बदल रहे हैं सांख्य दर्शन का। एक अलग पहलू से अब भगवान अर्जुन को समझाने वाले हैं कि अर्जुन का कर्तव्य क्या है, और आज के श्लोक से हम देखेंगे कि भगवान कैसे इसी सांख्य दर्शन को लेते हुए भगवद गीता के ज्ञान में प्रगति ला रहे हैं और अर्जुन की बुद्धि को और विकसित करते हुए, और इस अपेक्षा में कि अर्जुन की बुद्धि और विकसित हो चुकी होगी, आगे भगवान प्रारंभ करते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर् योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी। वो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में समझाया है। तो पिछले श्लोकों से आज के श्लोक का यह संबंध है। अब आपको एक समझ में आया कि इसकी प्रगति कैसे हो रही है इस अध्याय की। तो यदि हम प्रगति की बात कर रहे हैं तो हम देखें कि सांख्य योग का दर्शन भगवान ने अर्जुन को दिया देह आत्मा विभाजन के द्वारा, और आज के श्लोक में भगवान बुद्धि योग के ऊपर बल दे रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल गणना में मत अटक जाओ। सांख्य का अर्थ क्या होता है? एनालिटिकल स्टडी या गणना करते रहना कि ये तत्व ऐसे हैं, वो तत्व वैसे हैं, ये भौतिक तत्व या आध्यात्मिक तत्व, कैलकुलेशन। परंतु भगवान कह रहे हैं कि उसे और भी बृहद बुद्धि से समझो, ब्रॉड इंटेलिजेंस, और वो है बुद्धि योग। तो फिर हम यदि इस ग्राफ को देखें कि भगवान इस दूसरे अध्याय में ग्राफ कहां जा रहा है? एरो ऊपर की ओर जा रहा है, ज्ञान ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम देखें, भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत की देहांतर की प्रक्रिया, कि देह में और आत्मा में क्या अंतर, और कैसे ये शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा वो अविनाशी है। तो यदि हम उसे लें कि देहांतर की प्रक्रिया, तो अब भगवान ने आज के श्लोक से उस देहांतर की प्रक्रिया से प्रोग्रेस कैसे किया, प्रगति कैसे की है हमें। हाँ, तो उसका देहांतर से क्या संबंध है? ठीक है, थोड़ा कठिन होगा ये। तो कोई पूछेगा ना कि ठीक है आपने ये बता दिया कि देहांतर कैसे होता है, लेकिन क्यों होता है देहांतर ये नहीं बताया ना अभी तक। देहांतर का कारण क्या है? तो हमने पूरी भगवत गीता पढ़ रखी है, वो अभी स्लाइड देखने के बाद बोल रहे हैं उत्तर। हाँ, तो अब भगवान केवल अर्जुन को यही नहीं बता रहे कि तुम्हें क्या युद्ध करने से फायदा नुकसान होगा, केवल अर्जुन को यही नहीं बताया कि तुम जिनको मारोगे वो तो वैसे ही मरे हुए हैं उनका शरीर, या उनको दूसरा शरीर तो मिलने ही वाला है, पुनर्जन्म तो होने ही वाला है आज के श्लोक से। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवत गीता जब हम पढ़ें तो एक एक श्लोक जो है वो पिछले श्लोकों का कोई एक उत्तर होता है, या तो पिछले किसी श्लोक का कोई प्रश्न का उत्तर होगा या पिछले श्लोकों का विस्तार होगा। ऐसे अंधाधुंध भगवान कुछ श्लोकों को नहीं बोल रहे कि ये भूल गए, तो अभी आजकल के जो पंडित होते हैं कुछ लोग भूल गए तो चलो यहां वहां का कट पेस्ट करके लगा दो। इसलिए जैसे आज का श्लोक है वो अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है जो अर्जुन ने पूछा कि देहांतर की प्रक्रिया तो आपने समझाई, लेकिन क्यों होता है देहांतर? तो आज के श्लोक से कर्म, कर्म का जो नियम है, कर्म का जो ज्ञान है वो भगवान अर्जुन, इसलिए इसमें प्रगति बढ़ोतरी है, प्रगतिशील ज्ञान ये हमें आज के श्लोक से समझ में आ रहा है। और यदि फिर से इस ग्राफ को हम देखें तो अब तक भगवान अर्जुन को युद्ध करने का महत्व बता रहे थे, है ना? कैसे बता रहे थे? पिछले श्लोक तक भगवान अर्जुन को युद्ध करने का महत्व कैसे बता रहे थे? स्वर्ग की प्राप्ति, और किस तरीके से बताया महत्व? हाँ, युद्ध में यदि मर भी गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो राज्य मिलेगा, और भाग गए तो अकीर्ति और नरक यात्रा। कौन सी यात्रा? नरक की यात्रा। तो भगवान ने डराकर, थोड़ा धमकाकर, थोड़ा प्रलोभन देकर केवल पिछले श्लोक तक भगवान का यही उद्देश्य दिख रहा है इस दूसरे अध्याय में, अर्जुन ये न के न प्रकार है ना, तू अपना गांडी उठाओ युद्ध करो बस। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के केवल पिछले श्लोक तक पढ़ता है, वो जो हमने लिया था 38 श्लोक तक, तो उसे यही लगेगा कि भगवान ने भगवत गीता किस लिए सुनाई? ताकि अर्जुन गांडी उठाकर युद्ध करे, बस। इसे ज्यादा और कुछ दिखता नहीं प्रयोजन। परंतु आज के श्लोक से भगवान ये बता रहे हैं कि केवल ये जो एक कर्म है ना युद्ध करने का, मैं केवल उस पर जोर नहीं देने वाला हूं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तुमने बात छेड़ दी है तो अब सुनना पड़ेगा, अब मुझे झेलो। अब मैं कर्म का नियम, कौन कौन से कर्म होते हैं, ज्ञान, अष्टांग, उसके पश्चात भक्ति, वो सब अब मैं तुम्हें सुना कर रहा हूं। तो इसलिए होता ना, सोते हुए शेर को जगा दिया अर्जुन ने। तो भगवान सीधे साधे केवल रथ हांक रहे थे कि खड़े होकर युद्ध कर लेगा, अर्जुन फिर रोने बिलखने लगे, बैठ गए, ये नहीं वो नहीं समझा रहे, नहीं समझा तो ठीक है अब केवल ये युद्ध नहीं, देखो जितने सारे और युद्ध, कभी तुम नीचे बैठोगे नहीं। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है इस ज्ञान में, भगवद गीता के ज्ञान में। तो भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं और जो 700 श्लोक हैं, उनमें हम इसी ग्राफ को ध्यान में रखते हुए भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए कि भगवद गीता प्रगतिशील है। फिर से अपना एक ग्राफ आ गया कि भगवद गीता का ज्ञान प्रगतिशील है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसकी तुलना अग्नि से की गई है। जैसे कि भगवद गीता में भी और श्रीमद् भागवत में भी ये संस्कृत का शब्द है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि सुना, ज्ञानाग्नि। तो आध्यात्मिक ज्ञान की तुलना अग्नि से क्यों की गई है? अच्छा, जैसे अग्नि अशुद्ध चीजों को जलाकर शुद्ध कर देती है वैसे। हाँ, लेकिन आज ये भी सही बात है, लेकिन आज जिस मुद्दे पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसके संदर्भ में आध्यात्मिक ज्ञान की तुलना अग्नि से क्यों की गई? हाँ, अच्छा, देखिए यहां पर चित्र को ध्यान से देखिए, एक हिंट आपको दिया। अग्नि की लपटें हर समय ऊपर जाती है ना, कभी देखा नीचे जा रही है अग्नि की लपटें? हर समय अग्नि, चाहे आप किसी भी पोजीशन में अग्नि को पकड़ो, अग्नि की लपटें हर समय ऊपर की दिशा में जाती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान, चाहे आप कौन सी भी उम्र में, कौन सी भी दशा में, कौन सी भी स्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान के संपर्क में आओ, वो आपको उस स्थिति से ऊपर लेके जाएगा। थोड़ा ये अलग दृष्टिकोण है। इसलिए उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है। इसलिए देखिए, अग्नि हर समय, अग्नि को पूजा जाता है। अग्नि को इसलिए पूजा जाता है, जब अंतिम संस्कार भी होता है तब भी वो अग्नि क्रिया होती है, जिसके द्वारा जो कुछ कलमश है वो नष्ट भी हो जाए और फिर उसकी जो भी थोड़ी बहुत चेतना किसी धर्म में लगी है तो अग्नि के द्वारा वो, उन लपटों के द्वारा वो ऊंचे लोकों को प्राप्त हो। इसलिए जो अगला श्लोक है 40वां जो हम लेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, नेहा भिक्रमनाशोस्ति। उसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक क्रिया जो है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, जैसे कि अग्नि की लपटे कभी नीचे की ओर नहीं दिखती, हर समय उसकी प्रगति ऊपर की ओर ही होती है। और इसके विपरीत भौतिक ज्ञान की तुलना जल से की गई, हर समय नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो ये जो भौतिक ज्ञान है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी भौतिक रूप से पढ़ा लिखा हो और भौतिक रूप से प्रगत हो, उसने जो भी कुछ किया हो, पीएचडी और डबल डॉक्टरेट और पता नहीं उससे ज्यादा कुछ होता है क्या, जो भी ट्रिपल चौबल जो भी किया हो, क्योंकि वो जो भी ज्ञान है वो ज्ञान केवल जो ये भौतिक तत्व हैं इन्हीं में मंडरा रहा है ना। वो इन्हीं में मंड रहा है, चाहे कितना भी बड़ा कोई साइंटिस्ट हो, केवल इसी में मंड रहा है, ये भौतिक तत्वों में। तो इसलिए जो सांख्य दर्शन है, भगवान ये बता रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन है केवल तत्वों का विश्लेषण करना, कि ये जल अग्नि वायु ये सब जो तत्व हैं केवल इसका विश्लेषण करना, ये केवल ऐसा ज्ञान है जो तुम्हें इस भौतिक संसार में घुमाता रहेगा। तो बुद्धि, यहां पर भगवान केवल बुद्धि नहीं कहे, बुद्धि योग, कि जो भौतिक ज्ञान अर्जित करता है ऐसा नहीं कि उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें बुद्धि है। जो भौतिक ज्ञान अर्जित कर रहा है, कोई बहुत डिग्री हासिल कर लिया है, बहुत विद्वान है, वो है, उसके अंदर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि योग नहीं है। क्या अंतर हुआ बुद्धि में, बुद्धि योग में? योग का क्या अर्थ है? हाँ, जब तक कि वो बुद्धि योग या ये या भगवान के संपर्क में नहीं आती, तब तक वो बुद्धि किसी काम की नहीं। इसलिए भगवान एक एक जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इन श्लोकों में वो बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धिर योगे त्विमाम श्रृणु, इसलिए ध्यान से सुनो अर्जुन, एक एक शब्द पर ध्यान दो। फिर से बोल रहे हैं अर्जुन को, श्रृणु। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस भौतिक संसार में यदि हम भौतिक स्तर पर चाहे ज्ञान अर्जित करें, चाहे कर्म करें, कुछ भी भौतिक स्तर पर करें, वो हर समय दुर्गतिशील, प्रगतिशील का उल्टा क्या, दुर्गतिशील। एक उदाहरण दिया गया है कि इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अपने आप को जिलाने के लिए पैसे कमाता है ना। पैसे किसके बलबूते पर कमाता है? किसी ज्ञान के बलबूते पर। कुछ ज्ञान अर्जित करता है, वो ज्ञान भी इस भौतिक संसार का ही अर्जित करता है, और इस भौतिक संसार के ही तत्वों को वो उस ज्ञान के बलबूते पर खरीदता है और इस शरीर को जिलाता है। जैसे कि हम उदाहरण दिया, हम अन्न खाते हैं, तो जो अन्न हम खा रहे हैं वो अन्न कुछ समय बाद सड़ जाता है कि नहीं, चाहे वो फल हो, चाहे अन्न हो, चाहे जो भी कुछ हो, उसे रख दो कुछ समय बाद क्या होगा? एक फ्रूट को आप रख दो, ताजा सेब, कुछ समय बाद सड़ने लगेगा, कीड़े लग जाएंगे, सड़ जाएगा। अब डॉक्टर कहता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, पता नहीं डॉक्टर नहीं बोलता होगा वो, दूसरे बोलते ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो वो एप्पल, वो जो सेब जो खाने से जिसकी सेहत बनी है, वो बाहर रख दिया जाए तो वो सड़ जाता है, तो अंदर जाकर वो क्या, बहुत तरोताजा हो जाएगा। तो ये शरीर, हां, केवल कुछ शक्ति कुछ समय के लिए प्राप्त करने के लिए हम अन्न फल इत्यादि खाते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है कि ये अन्न, इनके अंदर स्वाभाविक रूप से कोई गुण नहीं है हमें आत्मा के, आत्मा का जो स्वरूप है उसे दिखाने का। इसी प्रकार से यदि कोई भौतिक ज्ञान पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और भौतिक ज्ञान पढ़ते पढ़ते उसे अगर ये लगे कि एक दिन मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो उसी प्रकार से है कि कोई शेर शाकाहारी भोजन खाते 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 सोच रहा है एक दिन मैं शाकाहारी हो जाऊंगा, नहीं होगा वो। तो इसलिए ये प्रिंसिपल समझना बहुत आवश्यक है, एनीथिंग कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी इज प्रोग्रेसिव, एनीथिंग कनेक्टेड टू मटेरियलिटी इज डिग्रेसिव। चाहे वो एक पुस्तक हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई क्रिया हो, जब तक हम उसे किसी ऐसे एलिमेंट, स्पिरिचुअल एलिमेंट से कनेक्ट नहीं करते जो डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड है, तब तक वो हर समय डिग्रेसिव पाथ पर रहेगा। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि भगवद गीता का जो ज्ञान है, शुरुआत हुई देहिनोस्मिन यथा देहे से, और भगवद गीता का अंत कहां, सर्वधर्मान परित्यज्य। कितना बड़ा प्रोग्रेस देखो, कहां से कहां। और जो भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ आप लो, आध्यात्मिक ग्रंथों में हर समय आप क्या देखोगे, प्रगति। जैसे कि उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी ने रचा, तो उपदेशामृत की शुरुआत किससे होती है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, कैसे अपने वेगों को वश में कीजिए। अब उपदेशामृत ये ग्रंथ जो है, कितने श्लोक है इसमें, केवल 11 है। कोई भक्ति शास्त्र कितने श्लोक है, 11। उपदेशामृत में केवल 11 श्लोक है। पहला श्लोक है वाचो वेगम और अंतिम श्लोक है राधा कुंड निवास। सोचिए कि कोई व्यक्ति वाचो वेगम पढ़ रहा है, लेकिन जो लेखक हैं उस ग्रंथ के, वो उस व्यक्ति को इतनी प्रगति पर ले जा रहे हैं कि वाचो वेगम से राधा कुंड भगवान के धाम में निवास कैसे है। तो उसमें क्या देख रहे हैं हम, प्रगति। तो इस पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, आपको लग रहा हो, ये इसलिए दे रहे हैं कि जब हम भगवद गीता पढ़ें तो भगवद गीता की प्रगति को तो हम पढ़ रहे हैं, और भगवद गीता हमारी तरफ देख रहा है कि तुम में हो रही क्या प्रगति, वैसे ही वो जरूरी है। हाँ, हम सेमिनार में बैठ के ग्राफ वगैरह निकाल दिए होते वो इधर से उधर, अरे हमारे जीवन का ग्राफ कहां जा रहा है, वो बहुत जरूरी है कि उल्टा तो नहीं जा रहा है वहां से। तो इसलिए जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, इन बातों को, इन तत्वों को समझते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को उसकी बुद्धि विकसित करते हुए समझने के लिए दिया, तो हमें भी हमारे जीवन में उसी प्रकार का प्रोग्रेसिव चेंज हमारे अंदर आना चाहिए। उसका एक प्रिंसिपल है पीपीसी प्रिंसिपल, पॉजिटिव प्रोग्रेसिव चेंज, कि वो हमारे अंदर दिखना चाहिए जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये जो हैं नास्तिक कपिल मुनि, एक हैं आस्तिक अवतार जो भगवान के वो हैं, वो बहुत पहले हुए, और ये हाल ही में नास्तिक कपिल मुनि। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये नास्तिक सांख्य दर्शन क्या है। सर्वप्रथम ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं। तो ये प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यदि कोई ठीक से इसे नहीं समझेगा असली सांख्य दर्शन को, तो उसे लगेगा कि जो ये नास्तिकवाद का प्रचार कर रहे हैं सांख्य दर्शन के नाम पर, उसे ही वो असली सांख्य दर्शन मान लेंगे। तो बुनियाद क्या है इस नास्तिक सांख्य दर्शन की, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। हां, मुक्ति के बारे में बोलते हैं वो, लेकिन मुक्ति के विषय में क्या कहते हैं, भौतिक तत्वों का विश्लेषण करके अपने को प्रकृति से अलग समझना। हां, वैराग्य, डिटैचमेंट, विरक्ति, इन सब के विषय में बोलते हैं, लेकिन उसके आगे क्या, बस भगवान भगवान है, वो बातें नहीं करना चाहिए। तो ये ज्यादा बहुत डेंजरस नास्तिकवाद है ये, क्योंकि इसके अंदर एक स्पिरिचुअल टच दिख रहा है। कौन सा, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का एक स्पिरिचुअल टच दिख रहा है, और उसके वजह से लोगों के अंदर गलत फहमी आ जाती है कि यही वास्तविक आध्यात्म है। और कलयुग में ये बहुत आप लोग प्रचलित देखोगे कि हां, शुद्ध जीवन जियो, गलत कर्मों में मत लगो, तो सबको लगता है कि हाँ अच्छी बातें बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। परंतु अंततः लास्ट चैप्टर उनका खोलो तो लास्ट चैप्टर में क्या है, भगवान वगैरह कोई नहीं है, आप केवल अपने आप को इनसे मुक्त करते रहो करते रहो करते रहो, और उसके आगे फिर छोड़ देते हैं। वो स्पेस में धक्का मार के छोड़ दिया, अभी उधर उधर से कहां जाए, बस अब आप देखो। तो ये बहुत डेंजरस है, इससे अच्छा तो मैं अंदर ही था ना, थोड़ा कुछ तो सिक्योर था, अभी फेंक दिया मुझे इथर में। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में इनके विषय में। अब आज के श्लोक में श्रवण पर जोर दिया है। तो ये प्रश्न कोई पूछे कि अब तक अर्जुन क्या कर रहे थे, जैसे कि मान लो कि अभी हमारा प्रवचन 8 बजे शुरू हुआ और अचानक 9:15 बजे सुनो, अभी तक क्या हम आलू छिल रहे थे क्या? आपके प्रसाद के लिए। तो अचानक भगवान शृणु, त्विमाम शृणु, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि केवल अब सुनो मत, बुद्धि के सहारे बुद्धिर योगे तू इमाम शृणु, ये भगवान ने कहा है। तो अब ये बुद्धि के सहारे सुनने का अर्थ क्या होता है, बुद्धि के सहारे सुनने का क्या अर्थ होता है? हाँ हाँ सोच सोच समझ के। परंतु यहां पर ये बात आप जो बोल रहे हो सही बात है, बहुत बुद्धि लगाकर आपने बात बोली है। भगवान ये अर्जुन को बताना चाहते हैं कि अर्जुन अब तक मैंने जो ज्ञान दिया है ना तुम्हें, वो तुम्हारे शोक को नष्ट करने के लिए दिया बस। और शोक को नष्ट करने के लिए कोई बहुत बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हें केवल थोड़ा, कोई बच्चा रोता है तो उसको कोई बुद्धि से पुचकार नहीं सकता कि देखो कितने आंसू बह रहे हैं, तुम्हारा एनर्जी कम लेवल कम हो जाएगा, उसको बुद्धि से आप बता नहीं सकते। उसको थोड़ा बुला फुसला कर, देखो 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 टॉफी देखो, देखो देखो पंछी उड़ रहा है ये वो यहां। तो अर्जुन को भगवान अब तक थोड़ा भुला फुसला कर, थोड़ा डरा कर ये वो शोक दूर कर रहे थे। अब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो मैं कर्म का नियम तुम्हें समझाने वाला हूं ना, इसके लिए तुम अपने बुद्धि का दरवाजा खोलो, बुद्धि की किताब खोलो, और बुद्धि की चाबी से अब इस ताले को खोलो कर्म, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जो सेक्शन है इस दूसरे अध्याय का। इसलिए कह रहे हैं कि श्रवण करो लेकिन बुद्धि के सहारे, बुद्धेर योगे त्वि इमाम श्रवणो, ये महत्व इसका है। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा कर्म बंधन को काटो, बुद्धिर युक्तो कर्म बंधम प्रहस्यसि, कि कैसे उसे काटना है। तो ज्ञान योग में होता क्या है कि कोई ताला खुल नहीं रहा है, तोड़ दो उसको। ज्ञान योग का अर्थ है न इति न इति न इति, कि यदि परिवार के वजह से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, भाड़ में गया परिवार, छोड़ो परिवार को, ज्ञान योगी है। यदि आपको शरीर के वजह से आत्म साक्षात्कार नहीं होता, खत्म कर दो इस शरीर को। ये वैसे ही ताला खुल नहीं रहा, तोड़ो ताले को। ये वो प्रक्रिया है। निष्काम कर्म योग क्या है कि यदि ताला है तो उसकी चाबी भी होगी ना, बिना चाबी के ताला थोड़ी बना होगा, उसकी चाबी भी होगी। तो अब ये उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बहुत साधारण सा उदाहरण है लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो बहुत गहरा है कि एक जो ताला होता है उसकी एक चाबी, उस एक चाबी से आप उस ताले को बंद भी कर सकते हो और उसी चाबी से क्या वो दूसरी चाबी लानी पड़ेगी खोलने के लिए? नहीं, उसी चाबी से वो ताला खुलता भी है। तो अब इसे हमें क्या समझ में आ रहा है आज के श्लोक के संदर्भ में कि एक चाबी से वही ताला बंद भी होता है, वही चाबी से वो ताला खुलता भी है। क्या करना है, क्या समझ में? हाँ, चाबी को घुमाना है, घुमाने की क्रिया करनी है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, है ना? जब उल्टे तरीके से कोई चाबी घुमा रहा है तो वो, और कई बार होते हैं ना, एक कोई लॉक्स को डबल लॉक ट्रिपल लॉक होता है, उसको घुमाते जाओ और बनता जाता है, और उसी चाबी को आप विपरीत दिशा में घुमाओ तो वही ताला खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। तो चाबी को नहीं फेंकना है ये बोलते हुए कि इसी चाबी ने ताले को बंद किया था, फेंको चाबी को, बकवास। तो कर्म के वजह से मैं बंधा हूं इस भौतिक संसार में, तो भाड़ में गया कर्म, बंद करो ये सब, कुछ कर्म नहीं करना, बस शून्य वॉइड। नहीं, इसलिए भगवान अर्जुन को अब थोड़ा बहुत रिफाइंड नॉलेज दे रहे हैं, बहुत सटल है, बहुत रिफाइंड नॉलेज दे रहे हैं कि तुम केवल, पहले पिछले श्लोक में कहा युद्ध करने के लिए युद्ध करो, तुम ये सुख दुख लाभ हानि इसके पीछे मत जाओ, इसके प्रपंच में मत पड़ो। और आज के श्लोक में भगवान और ऊपर अर्जुन को ले जा रहे हैं कि कैसे तुम यदि उस बुद्धि योग में स्थित होकर जो कर्म करोगे तो कर्म बंधन से तुम मुक्त होगे। तो अब हां, भगवान ने बुद्धि योग के विषय में कहा और निष्काम कर्म के विषय में कहा। तो मान लो यही उदाहरण को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं कि द्वार पर ताला लगाए और हमने अब ताले को निष्काम कर्म के द्वारा, उसी चाबी के द्वारा, उन्हीं कर्मों के द्वारा ताले को खोल दिया, खुल गया ताला। तो अब क्या आगे? इसलिए भगवान कहते हैं दरवाजा खुल गया है तो आगे की क्रिया क्या है? अब तुम्हें प्रवेश करना है। केवल उस बुद्धि से तुमने ताला तो खोल दिया, दरवाजा भी खुल गया, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद फिर तुम कहे चलो पलट के बाद चलते हैं फिर से, नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, केवल भगवान ने बुद्धि योग नहीं कहा, बुद्धिया युक्त, युक्त का अर्थ है लगो, कुछ करो। केवल तुम बुद्धि योग के विषय में जानो मत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। युक्त, युक्त का अर्थ है एंगेज, अर्जुन विथ योर इंटेलिजेंस यू एंगेज इन निष्काम कर्म। कि ताला खुल गया, द्वार खुल गया, किसका? आध्यात्मिक संस्कार, संसार का। तो अब वहां पर प्रवेश करो हे अर्जुन। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, जो अंतिम लाइन है आज के श्लोक की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इसी लाइन को यदि हम लें तो भगवान ने दसवें अध्याय में कहा है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। तो मानो अर्जुन ये प्रश्न पूछे कि मैं यदि केवल आपके संदर्भ में या आपके बताए हुए कर्मों में मैं लगता रहूंगा तो मैं कैसे बुद्धि को इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए मुझे तो ये कर्म बंद करना होगा ना, तब जाकर मैं सोच पाऊंगा, बुद्धि को इस्तेमाल करूंगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम लगते रहो सततम, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। दधामि बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम सही राह पर चलते रहोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्धि के साथ भगवान यहां पर श्रद्धा, साधारणतः इस भौतिक संसार में देखा जाता है कि जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो श्रद्धा नहीं रखते, और ये देखा जाता है कि जो ज्यादा ज्यादा श्रद्धा नहीं रखते वो बहुत बुद्धिमान देखे जाते हैं। इसको किसी पे श्रद्धा नहीं, कितना बुद्धिमान है, हाँ ऐसा देखा जाता। मैं सेल्फ स्टाइल्ड, मैं खुद का, अपना खुद का बना हुआ हूं, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं रखता। लेकिन यहां पर भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि और श्रद्धा का कॉम्बिनेशन इस श्लोक में, कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर तुम चलो, मैं तुम्हें वो दिव्य बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम मुझ तक पहुंच पाओगे। और अब पार्थ शब्द की व्याख्या। तो यहां पर पार्थ शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहा, पृथा के पुत्र। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी जो मां कुंती देवी, उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की थी, विपद संतुत्त शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, कि अर्जुन तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी विपदा तुम्हारे सामने है युद्ध करने की, तुम्हारी जो माता वो विपदा मांग रही थी मुझसे, मुझे विपदा दो भगवान, कठिनाई दो, संकट दो। क्यों? क्योंकि उस संकट में मुझे आपका दर्शन होगा। भवतो दर्शनम, आपका दर्शन होता है संकट में मुझे आपका, जब आपका दर्शन होता है तो अपुनर्भव दर्शनम, जन्म मृत्यु का दर्शन मुझे नहीं लेना पड़ेगा। तो यहां पर भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल भाव में आकर ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं इसे तुम विपदा मान रहे हो, तुम्हारी ये जो क्या बोलते हैं, कंपैशन जो तुम्हारा है, कृपा जो तुम दिखा रहे हो इनके प्रति, वो फॉल्स कंपैशन, क्योंकि वास्तविक जो संकट तुम इनके ऊपर डालोगे और अपने ऊपर डालोगे उसके विषय में तुम नहीं सोच रहे, उसे कहते हैं फॉल्स कंपैशन, एक प्रकार का भ्रम है तुम्हारे अंदर। जैसे मुझे याद है बहुत वर्षों पहले हमारे एयरफोर्स में एक सेरेमनी हुई थी, एक सर्टिफिकेट अवार्डिंग सेरेमनी हुई थी हमारी टीम की। तो उसमें एक हमारी टीम पार्टनर ने एक शेर प्रस्तुत किया था फॉल्स कंपैशन के ऊपर। उसमें समझ में आया कि कैसे आज का जो, अभी मुझे याद आया कि अर्जुन को जो भगवान संकेत कर रहे हैं वो भी कुछ उसी प्रकार से। तो उसमें वो कहता है कि एक स्थिति उसने प्रस्तुत की थी कि उस व्यक्ति को मच्छर ने काटा। किसने काटा? मच्छर ने उस व्यक्ति को काट लिया। तो अब वो मच्छर उसे काटा है इसके विषय में उसकी धारणा क्या है? वो कहता है कि मच्छर ने मुझे काटा, ये मच्छर का जुनून था, मच्छर ने मुझे काटा ये मच्छर का जुनून था, मैंने खुजलाया ये मेरा सुकून था।
<आ,
नहीं मुझे अब तक याद है, मच्छर ने मुझे काटा, ये मच्छर का जुनून था, मैंने फिर खुजलाया, ये मेरा सुकून था। चाहकर भी मैंने उस मच्छर को नहीं मारा, क्योंकि उस मच्छर में मेरे रगों का खून था। तो अर्जुन भी वही बोल रहे हैं कि इस दुर्योधन ने जो पीड़ा मुझे दी है, फिर भी ये दुर्योधन जो है वो मेरे ही परिवार का है, जैसे उस मच्छर के रगों में मेरा ही खून था, इसलिए मेरा भाई बन गया, ब्लड रिलेशन। तो ये ब्लड रिलेशन अर्जुन यहां पे अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम अपना रिलेशन अपनी मां के पास देखो कि वो संकट मांग रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस संकट की स्थिति में जब वो मेरा दर्शन करती हैं तो जन्म मृत्यु का दर्शन उन्हें नहीं होगा। तो भगवान अब इस श्लोक के पश्चात अगले श्लोक में अर्जुन को बताने वाले हैं कि अर्जुन तुम थोड़ी बहुत भी यदि मेरी बात मान लोगे, स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, यदि स्वल्प मात्रा में भी तुमने यदि धर्म का पालन कर लिया जो मैं कह रहा हूं उसके अनुसार, तो त्रायते महतो भया, बड़े बड़े भय से तुम अपने आप को मुक्त कर पाओगे। हरे कृष्णा।